अध्याय 41 यर्दन में स्वधर्म त्याग। यह अध्याय गिनती 25 पर आधारित है। आनंदित हृदयों और परमेश्वर में नवीनीकृत विश्वास के साथ इज़राइल की सेनाएं बाशान से लौट आई थीं। उन्होंने लाभप्रद भूखंड पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और वे कनान पर तत्काल विजय पाने के लिए आश्वस्त थे। उनके और प्रतिज्ञा के देश के बीच में केवल यर्दन नदी थी। नदी के पार एक उपजाऊ मैदान था जो हरियाली से आवृत था, कई झरनों से प्रवाहित धाराओं से तरित था और ताल के घने वृक्षों से आच्छादित था। मैदान की पश्चिमी सीमा पर यरीहो के महल और मीनारे थीं, जो ताड़ की वृक्ष वाटिकाओं से इतने घिरे हुए थे कि यरीहो को ताड़ के पेड़ों का शहर कहा जाता था। यरीहो के पूरब में जिस पठार पर वे चल रहे थे, उसके और नदी के बीच एक मैदान था जो कई मील चौड़ा था और नदी के किनारे कुछ दूरी तक फैला हुआ था। इस परिरक्षित घाटी की जलवायु उष्णकटिबंध की जलवायु के समान थी और यहाँ शित्तीम या कीकी के वृक्षों की भरमार थी, जिससे इस मैदान का नाम शित्तीम की घाटी पड़ा। इसराइलियों ने यहाँ पड़ाव डाला और नदी के किनारे की वृक्ष वाटिकाओं में उन्हें एक उपयुक्त आश्रय स्थल मिला। लेकिन इस आकर्षक परिवेश के मध्य उनका सामना एक ऐसी बुराई से होना था जो बीहर के जंगली जानवरों या हथियारबंद सैनिकों की शक्तिशाली सेनाओं से भी अधिक घातक थी। प्राकृतिक सुविधाओं से संपन्न वह देश वहां के निवासियों द्वारा दूषित कर दिया गया था। मुख्य देवता बाल की सार्वजनिक आराधना में सबसे अपमानजनक और अधर्मी दृश्यों को अभिनीत किया जाता था। हर तरफ मूर्ति पूजा और व्यभिचार के लिए विख्यात स्थान थे। उनके नाम ही लोगों के भ्रष्टाचार और दुष्टता के संकेतक थे। इस परिवेश ने इसराइलियों पर मलिनकारी प्रभाव डाला। उनके मन लगातार प्रस्तावित भ्रष्ट विचारों से परिचित हो गए। उनके आरामदेह और निष्क्रिय जीवन ने नीति भ्रष्ट करने वाले प्रभाव उत्पन्न किए और लगभग स्वयं से अनजान वे परमेश्वर से दूर हो रहे थे और उस अवस्था में आ रहे थे जिसमें वे आसानी से प्रलोभन का शिकार हो जाते। यर्दन के किनारे पड़ाव डालते समय मूसा कनान में स्थापित होने की तैयारी कर रहा था। इस कार्य में महान अगुआ पूरी तरह व्यस्त था, लेकिन लोगों के लिए असमंजस और प्रत्याशा का ये समय बहुत कष्टकर था। और कुछ ही सप्ताह बीते थे कि उनका इतिहास सदाचार और निष्ठा से हटकर अत्यंत भयावह अपसरण से दूषित हो गया। प्रारंभ में इसराइलियों और उनके मूर्ति पूजक पड़ोसियों के बीच सीमित संपर्क था, लेकिन कुछ समय पश्चात मिद्यानी स्त्रियां चुपके से छावनी में आने लगी। उनके आने से कोई खलबली नहीं मची और उनकी युक्तियां इतने गुप्त रूप से संचालित की थीं कि मूसा का ध्यान इस विषय की ओर नहीं लाया गया। इब्रानियों के साथ संगति में इन स्त्रियों का लक्ष्य इब्रियों को परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उकसाना, उनका ध्यान मूर्ति पूजक विधियों और रीति रिवाजों की ओर आकर्षित करना और उन्हें मूर्ति पूजा में ले जाना था। ये लक्ष्य मित्रता के स्वांग में ध्यान से संगुप्त थे, ताकि इनका संदेह लोगों के अभिभावकों को भी नहीं हुआ। बिलाम के परामर्श अनुसार मोआब के राजा ने मोआबी देवताओं के सम्मान में एक भव्य पर्व का आयोजन किया और गुप्त रूप से प्रबंध किया गया कि बिलाम इसराइलियों को इस पर्व में सम्मिलित होने को मनाए। बड़ी संख्या में लोग इस उत्सव को देखने के लिए उसके साथ हो लिए। उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र में जाने का दुस्साहस किया और शैतान के जाल में फंस गए। नृत्य और संगीत से मोहित और अधर्मी स्त्रियों के सौंदर्य से आकर्षित होकर उन्होंने यहोवा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को त्याग दिया। जैसे जैसे वे आमोद प्रमोद और सहभोज में सम्मिलित हुए, मदिरापान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और आत्मसंयम के बांध को तोड़ दिया। आवेग के वश में अपनी अंतरात्मा को अश्लीलता से मलिन कर वे मूर्तियों को दंडवत करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय में इसराइल की छावनी में घातक रोग की तरह ये जहर फैल गया। जो युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते थे, वे अधर्मी स्त्रियों के छल कपट से पराजित हो गए। लोग प्रेमंद से प्रतीत हो रहे थे। प्रतिष्ठित व्यक्ति और प्रधान आज्ञा का उल्लंघन करने में सर्वप्रथम थे और इतने लोग दोषी थे कि स्वधर्म त्याग पूरे देश में सर्वव्यापी हो गया। इसराइली बालपोर देवता को पूजने लगे। जब मूसा को इस पाप को देखने के लिए जागृत किया गया, उनके शत्रुओं के षड्यंत्र इतने सफल हो गए थे कि पोर पर्वत पर होने वाली व्यभिचारी पूजा में इसराइली केवल सम्मिलित ही नहीं हो रहे थे, वरन मूर्ति पूजा संबंधित विधियां इसराइल के डेरों में भी पालन की जाने लगी थी। वृद्ध अगुआ क्रोध से भर गया और परमेश्वर का कोप भड़क उठा। उनकी अधर्मी प्रथाओं ने इसराइलियों के लिए वह कर दिया जो बिलाम का जादू टोना नहीं कर सका। इन प्रथाओं ने उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। शीघ्र आने वाली दंडाज्ञाओं के द्वारा लोगों को उनके पाप की घोरता के प्रति जागरूक किया गया। छावनी में ऐसी महामारी फैली कि उसमें लाखों लोग मारे गए। परमेश्वर ने आदेश दिया कि स्वधर्म त्याग के अगुओं को न्यायियों द्वारा मृत्युदंड दिया जाए। आदेश का तत्परता से पालन किया गया। अपराधियों का वध किया गया और उनके शवों को समस्त इसराइल की दृष्टि में टांगा गया, ताकि प्रजा यह देखकर कि उनके अगुओं के साथ इतना कठोर व्यवहार किया गया, उनके पाप के प्रति परमेश्वर की घृणा और उनके विरुद्ध उसके क्रोध के प्रकोप का गहराई से आभास कर सके। सभी को लगा कि दंड न्यायसंगत था और लोग शीघ्र ही मिलाप वाले तंबू में गए और दीन होकर आंसुओं के साथ अपने पापों का अंगीकार किया। जब वे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर परमेश्वर के सम्मुख रो रहे थे, जब महामारी मृत्यु संबंधित अपना कार्य कर रही थी और न्यायी अपने कठोर कार्यभार को कार्यान्वित कर रहे थे, इसराइल का एक प्रधान जिम्री मिद्यान के एक घराने की राजकुमारी एक मिद्यानी कस्बी के साथ छावनी में निडरतापूर्वक आया और उसे अपने तंबू में ले गया। पाप कभी भी इससे अधिक निडर और उद्यंड नहीं था। नशे में चूर जिम्री ने अपने सदोम समान पाप की घोषणा की और अपनी निर्लज्जता में आनंदित हुआ। याजकों और अगुओं ने दीन व दुखी होकर वेदी और आंगन के बीच रोते हुए और परमेश्वर से उसके लोगों को दंडित न करने की विनती करते हुए दंडवत किया था, जबकि पूरी मंडली की उपस्थिति में इसराइल के इस प्रधान ने अपने पाप का प्रदर्शन किया, मानो परमेश्वर के प्रतिशोध को ललकारना चाहता हो और छावनी के न्यायियों की हंसी उड़ाना चाहता हो। महायाजक एलियाजार का पुत्र पीनहास मंडली के मध्य से उठा और हाथ में एक बर्छी लेकर उस इसराइली पुरुष के डेरे में भीतर गया और दोनों को मार दिया। इस पर मरी थम गईं और जिस याजक ने पवित्र आदेश को कार्यान्वित किया था उसे इसराइल के सम्मुख सम्मानित किया गया और उसको और उसके घराने को हमेशा के लिए याजकता सौंपी गई। पवित्र संदेश था, पीनहास ने मेरी जलजलाहट को इसराइलियों पर से दूर किया, इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसमें अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इसराइलियों के लिए प्रायश्चित किया। शित्तीम में पाप के कारण इसराइलियों पर आई दंडाज्ञा ने उस विशाल समुदाय के उत्तरजीवियों को नष्ट कर दिया जिन्होंने 40 वर्ष पूर्व अपने ऊपर ली थी। वे अवश्य ही बीहड़ में मृत्यु को प्राप्त होंगे। यर्दन की तराइयों में पड़ाव के दौरान पत्री निर्देशानुसार की गई जनगणना से ज्ञात हुआ कि जिन इसराइलियों को मूसा और याजक हारून ने सिने के बीहड़ में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में न था। यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा। गिनती 26 आयत 64-65।
परमेश्वर ने इसराइल पर दंडाज्ञा भेजी क्योंकि वे मिद्यानियों के बहकावे में आ गए, लेकिन प्रलोभन देने वाले ईश्वरीय न्याय के प्रकोप से बचकर नहीं निकल सकते थे। अमालेकियों ने इसराइल पर रपीदीम में आक्रमण किया था और सेना के पिछले वर्ग के थके और क्षीण लोगों पर चढ़ाई की थी, लेकिन जिन मिद्यानियों ने उन्हें पाप में छलावे द्वारा घसीटा, उन्हें परमेश्वर की दंडाज्ञा का शीघ्र ही एहसास कराया गया, क्योंकि वे सबसे खतरनाक शत्रु थे। मिद्यानियों से इसराइलियों का बदला ले। गिनती 31 आयत 2। मूसा को यह परमेश्वर का आदेश था, बात को तू अपने लोगों से जा मिलेगा। इस जनादेश का तत्परता से पालन किया गया। प्रत्येक घराने से 1,000 पुरुषों को चुना गया और उन्हें पीनहास के नेतृत्व में बाहर भेजा गया, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। जिन लोगों को उन्होंने मार डाला उनमें 5 मिद्यानी राजा भी थे। उन्होंने बोर के पुत्र बिलाम को भी तलवार से मार डाला। गिनती 31 आयत 7-8। आक्रमण करने वाली सेना के द्वारा बंदी बनाई गई महिलाओं को मूसा के आदेश पर मृत्यु के घाट उतार दिया गया और उन्हें इसराइल के शत्रुओं में सबसे अधिक दोषी और खतरनाक ठहराया गया। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उत्पात की योजना बनाने वालों का ऐसा अंत हुआ। भजन संहिता में लिखा है, अन्य जाति वाली ने जो कुआ खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पांव फंस गया। भजन संहिता 9:15। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपनी धरोहर को नहीं छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा। वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। उसने उनका अनर्थ उन्हीं पर लौटाया है और वो उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। भजन संहिता 94:14-15-21-23। जब बिलाम को इब्रियों को श्राप देने के लिए बुलाया गया, वो अपने जादू टोने से उनको क्षति नहीं पहुंचा सका, क्योंकि प्रभु ने याकूब में अनर्थ नहीं पाया था और ना ही उसने इसराइल में भ्रष्टता देखी थी। गिनती 23:21-23। लेकिन जब प्रलोभन में पड़कर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका प्रतिरक्षक उनसे दूर हो गया। जब परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञाओं के प्रति निष्ठावान होते हैं तो कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल के विरुद्ध कोई भविष्यवाणी है। इस कारण उन्हें छल कपट से पाए जाने के लिए शैतान की संपूर्ण शक्ति और कपटी युक्तियां प्रयोग में लाई जाती है। यदि परमेश्वर की व्यवस्था के संरक्षक होने का दावा करने वाले उसके सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले बन जाते हैं तो वे परमेश्वर से स्वयं को दूर कर लेते हैं और वे अपने शत्रुओं के सम्मुख खड़े होने में असमर्थ होंगे। इसराइली जो मिद्यान के जादू टोने या हथियारों से वशीभूत न हो सके, वे मिद्यान की भ्रष्ट स्त्रियों के शिकार हो गए। शैतान की सेवा टहल में प्राप्त, ऐसी है वो शक्ति जो उस स्त्री ने आत्माओं को फंसाने और नष्ट करने के लिए प्रयोग की है। नीति वचन 7:26 में लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग उसने मार गिराए हैं, उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या है। इसी प्रकार शेत की संतान को उनकी निष्ठा से दूर किया गया और वे पवित्र भ्रष्ट हो गए। इसी प्रकार यूसुफ को प्रलोभन दिया गया। इसी प्रकार इसराइल के न्यायी शिमशोन ने अपनी शक्ति को पलिश्तियों के हाथों खो दिया। यहां दाऊद ने ठोकर खाई और सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान, जिसे 3 बार परमेश्वर का प्रिय कहा गया था, आवेग का दास बना और उसने उसी सम्मोहन शक्ति के लिए अपनी सत्य निष्ठा को बलिदान कर दिया। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ीं दृष्टांत की रीति पर थीं और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहें कि कहीं गिर न पड़े। 1 कुरिन्थियों 10:11-12। शैतान भली भांति जानता है कि मनुष्य के हृदय में उसे किस बात को संबोधित करना है। वह जानता है क्योंकि उसने हजारों वर्षों से पैशाचिक प्रगाढ़ता से अध्ययन किया है प्रत्येक प्राणी में आसानी से प्रभावित होने वाले विषय, और सभी पीढ़ियों में उसने इसराइल के प्रधानों और शक्ति मनुष्यों को उन्हीं प्रलोभनों से पराजित किया है जो बालपोर में इतने सफल रहे थे। तब से अब तक के युगों में अत्यंत कमजोर व्यक्ति फैले हुए हैं जो कामुक अतिभोग की कमजोरी में फंस कर रह गए। जैसे जैसे हम अंतिम समय के समीप आते हैं, जब लोग स्वर्गीय कनान की सीमाओं पर खड़े हैं, पहले की तरह शैतान उन्हें उस समृद्ध देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपने प्रयत्नों को दुगना कर देगा। वह प्रत्येक मनुष्य के लिए जाल बिछाता है। वे केवल अनभिज्ञ और असभ्य ही नहीं जिन्हें रक्षित होने की आवश्यकता है, शैतान अपने प्रलोभन उनके लिए भी तैयार करेगा जो सबसे पवित्र कार्यों के लिए उच्च पदों पर आसीन है। यदि वह उनसे उनकी आत्मा को भ्रष्ट करवा सकता है तो उनके द्वारा कई लोगों को नष्ट कर सकता है। आज भी वह उन्हीं माध्यमों का प्रयोग करता है जो उसने 3000 वर्ष पूर्व अपनाए थे, सांसारिक मित्रता द्वारा, सौंदर्य के आकर्षण से, भोग विलास, आमोद प्रमोद, सहभोज या मदिरापान के माध्यम से वह 7वीं आज्ञा के उल्लंघन के लिए प्रलोभन देता है। इससे पहले कि वह उन्हें मूर्ति पूजा के लिए मनाता, शैतान ने छल से इसराइल को व्यभिचार के लिए भरमाया। जो परमेश्वर की छवि का निरादर करेंगे और अपने निजी शरीर में उसके मंदिर को दूषित करेंगे, वे परमेश्वर के प्रति किसी भी अपमान से अपने दुष्ट हृदयों की मनोकामना को संतुष्ट करने में नहीं हिचकिचाएंगे। कामुक अतिभोग विवेक को क्षीण और आत्मा को भ्रष्ट कर देता है। पाश्विक प्रवृत्ति की संतुष्टि द्वारा नैतिक और मानसिक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और आवेग के दास के लिए परमेश्वर की व्यवस्था के पवित्र दायित्व को जानना, प्रायश्चित का आभार मानना और आत्मा का सही मूल्यांकन करना असंभव है। भलाई, पवित्रता, सत्य, परमेश्वर के लिए श्रद्धा, पवित्र वस्तुओं के प्रति प्रेम, वे सभी पवित्र लगाव और शिष्ट इच्छाएं जो मनुष्य को स्वर्ग से जोड़ती हैं, कामुकता की अग्नि में भस्म हो जाती है। वह प्राणी एक कलंकित, उजाड़ बंजर भूमि, दुष्ट आत्माओं का गढ़ और प्रत्येक अशुद्ध और घृणास्पद चिड़िया का पिंजरा बन जाता है। परमेश्वर के स्वरूप में सृजन किए हुए प्राणियों को पशुओं के स्तर पर उतार दिया जाता है। मूर्ति पूजकों के साथ संगति करने और उनके उत्सवों में सम्मिलित होने से इब्रियों ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया, जिससे राष्ट्र पर दंडाज्ञा आई। आज भी मसीह के अनुयायियों को अधर्मियों की संगति में ले जाकर और उनके मनोरंजन में सम्मिलित कराकर शैतान उन्हें पाप के लिए आकर्षित करने में सफल होता है। दूसरा कुरंथियों 6:17 में लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। परमेश्वर आज भी अपने लोगों से सिद्धांतों, आचरण और रीति रिवाजों में संसार से अलग होने की उतनी ही अपेक्षा करता है जितनी कि प्राचीन काल में इसने इसराइल से की थी। यदि वे वचन की शिक्षा को निष्ठा से अपनाएंगे तो ये विशिष्टता बनी रहेगी, अन्यथा ये नहीं हो सकता। इब्रियों को आत्मसंगत करने के विरुद्ध दी गई चेतावनी मसीही लोगों को अधर्मियों के रीति रिवाजों और प्रथाओं के अनुरूप होने की निषेधाज्ञा से अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट नहीं थी। मसीह हमसे कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 1 यूहन्ना 2:5। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो स्वयं को परमेश्वर का बैरी बनाता है। 4:4। मसीह के अनुयायियों को स्वयं को पापियों से अलग करना है और अपने संग साथ का चयन तभी करना है जब उन पर उपकार करने का अवसर हो। जो हमारे ऊपर हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए प्रभाव डालते हैं, हम उनकी संगति से किनारा करने के लिए अत्यंत निर्णायक नहीं हो सकते। हमें परीक्षा में न पड़ने दे। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, हमें जहां संभव हो परीक्षा से दूर रहना है। जब इजरायली दिखावटी शांति और सुरक्षा की अवस्था में थे, वे पाप में ले जाए गए। उन्होंने परमेश्वर को सदा अपने आगे नहीं रखा, प्रार्थना की उपेक्षा की और आत्मविश्वास की भावना को पनपने दिया। सहजता और असंयम ने आत्मा के गढ़ को असुरक्षित कर दिया और भ्रष्ट विचारों ने प्रवेश पाया। वे दीवारों के भीतर के देशद्रोही थे जिन्होंने सिद्धांतों के गढ़ों को उखाड़ फेंका और इसराइल को शैतान के वश में होने दिया। इसी प्रकार आज भी शैतान आत्मा को विनाश तक पहुंचाना चाहता है। इससे पहले कि मसीही खुला पाप करे, उसके हृदय में संसार के लिए अज्ञात एक लंबी प्रारंभिक कार्यविधि चलती है। मन शुद्धता और पवित्रता से एकाएक भ्रष्टाचार, दुष्टता और अपराध में नहीं उतर आता है। परमेश्वर के स्वरूप में सृजन किए हुओं को पाश्विक या शैतानी छवि में उतारने में समय लगता है। निहारने से हम बदल जाते हैं। अपवित्र विचारों का भोग करने से मनुष्य अपने मन को इस तरह शिक्षित कर सकता है कि जिस पाप से उसने कभी घृणा की थी वही उसके मन को भाने लगेगा। शैतान प्रत्येक भ्रष्ट करने वाली बुराई और अपराध को लोकप्रिय करने के लिए हर साधन का प्रयोग कर रहा है। हम अपने शहरों की सड़कों पर किसी उपन्यास में प्रस्तुत या किसी विज्ञापन को देखे बिना नहीं चल सकते। मन को पाप के साथ परिचित होने की शिक्षा दी जाती है। तुच्छ व दुष्ट लोगों द्वारा अपनाए गए मार्गों को दैनिक पत्रिकाओं में लोगों के सम्मुख रखा जाता है और रोमांचक कथाओं के माध्यम से उनके जुनून को उत्तेजित किया जाता है।
वे नीचतापूर्ण अपराधों के बारे में इतना सुनते और पढ़ते हैं कि उनका पहले वाला अंतर्मन, जो दृश्यों से उत्पन्न डर से कांप जाता था, कठोर हो जाता है और वे इन विषयों के बारे में अत्यधिक रुचि के साथ विचार करने लगते हैं। वर्तमान जगत और तथा कथित मसीही लोगों के भी कई लोकप्रिय मनोरंजनों का उद्देश्य वही होता है जो अधर्मियों का था। उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनसे शैतान आत्माओं को नष्ट करने का ब्यौरा नहीं लेता। नाटक के माध्यम से वह बुराई को गौरवान्वित करने और आवेग को उत्तेजित करने के लिए सदियों से कार्य कर रहा है। सिद्धांतों के प्रतिरोध को तोड़ने और कामुक अतिभोग के लिए द्वार खोलने हेतु शैतान नृत्यशाला और उसका आकर्षक प्रदर्शन व विस्मयकारी संगीत, छद्मवेश, नृत्य और ताश खेलने की मेज का प्रयोग करता है। आमोद प्रमोद के प्रत्येक समारोह में जहां घमंड को प्रोत्साहन दिया जाता है या स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति की जाती है, जहां लोगों को परमेश्वर को भूलने और सात्विक रुचियों के प्रति उदासीन होने को प्रेरित किया जाता है, वहां शैतान आत्मा को अपनी जंजीर में जकड़ रहा होता है। नीतिवचन 4:23 में बुद्धिमान पुरुष का परामर्श है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीतिवचन 23:7 में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। पवित्र अनुग्रह से हृदय का नवीनीकरण करना चाहिए, अन्यथा जीवन की पवित्रता की अपेक्षा व्यर्थ होगी। जो भी मसीह के अनुग्रह के बिना एक सदाचारी व उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करने का प्रयत्न करता है, वो अस्थिर रेत पर अपना घर बना रहा है। प्रलोभन की भयानक आधी में यह निश्चय ही गिर जाएगा। दाऊद की प्रार्थना, प्रत्येक आत्मा का निवेदन होना चाहिए, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। भजन संहिता 51:10। और पवित्र वरदान के भागी बनकर हमें परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा रक्षा, 1 पतरस 1:5 के होते हुए सब प्रकार से संतोषप्रद बनाना है। फिर भी प्रलोभन का प्रतिरोध करने के लिए हमें एक कार्य करना है। जो शैतान की युक्तियों का शिकार नहीं होना चाहते, उन्हें आत्मा के सभी मार्गों को सुरक्षित रखना चाहिए। जो अपवित्र विचारों का सुझाव देते हैं, उन सब चीजों को पढ़ने, देखने या सुनने से दूर रहना चाहिए। आत्मा के शत्रु द्वारा सुझाव के रूप में दिए हुए प्रत्येक विषय पर मन को भटकने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेरित पत्रस कहता है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनूं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनूं। 1 पतरस 1:13-15। फिलिप्पियों 4:8 में पौलुस कहता है, जो जो बातें सत्य उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगा। इसके लिए हार्दिक प्रार्थना और निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होगी। हमें पवित्र आत्मा के स्थायी प्रभाव का सहयोग चाहिए होगा, जो मन को स्वर्ग की ओर आकर्षित करेगा और उसे पवित्र और शुद्ध चीजों पर मनन करने का अभ्यस्त बनाएगा। और हमें परमेश्वर के वचन का लगातार अध्ययन करना चाहिए। युवा, अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर। भजन लिखने वाला कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119:9-11। बेतपोर में इज़राइल के पाप के कारणवश प्रजा पर परमेश्वर की दंडाज्ञा आई, और हालांकि वही पाप इस युग में इतनी शीघ्रता से दंडित न हो, लेकिन उनका प्रतिफल मिलना निश्चित है। 1 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। प्रकृति ने इन अपराधों के लिए भयानक दंडाज्ञाएं निर्धारित की है। वे दंडाज्ञाएं जो शीघ्र या विलंब से आज्ञा उल्लंघन करने वालों को दी जाएगी। अन्य पापों की तुलना में इन पापों के कारण हमारी जाति का इतना भयंकर पतन हुआ और संसार दुख और रोग की अति से श्रापित हुआ। मनुष्य अपने सहवासियों से अपने पाप को छुपाने में सफल हो सकता है, लेकिन वे कष्ट, रोग,
मूर्खता या मृत्यु के रूप में उतना ही प्रतिफल पाएंगे। और इस जीवन के उस पार दंडाज्ञा की कचहरी अविनाशी दंड के प्रतिफल को लिए खड़ी है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, लेकिन शैतान और उसके दूतों के साथ उसका स्थान उस आग की झील में होगा जो दूसरी मृत्यु है। गलातियों 5:21, प्रकाशित वाक्य 20:14,
नीति वचन 5:3-4 में लिखा है, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी चिकनी होती हैं, परंतु परिणाम में ये जहर जैसी कड़वी और दो धार वाली तलवार जैसी तेज होती है। इसी पुस्तक के पद 8:11 में लिखा है, ऐसी स्त्री से दूर ही रहे और उसकी ड्योढ़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब तू रोता बिलकता रह जाए।
नीति वचन 2:18-19 में लिखा है, उसका घर मृत्यु की ढलान पर है, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता। नीति वचन 9:18 के अनुसार उस स्त्री के अतिथि अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं,